ओम शांति। लौकिक जीवन के अंदर व्यक्ति अपने खजानों को हमेशा देखता रहता है। चाहे कितनी भी प्रवृत्ति में व्यस्त हो या संबंधों के व्यवहार में हो, लेकिन सूक्ष्म में बुद्धि में ये जरूर रहता है कि मेरे पास ये खजाने हैं। और लक्ष्य भी रखते हैं कि ये खजाने मेरे भरपूर रहे, बल्कि उसमें वृद्धि होती जाए। जिसको हम बैलेंस कहते हैं, जितना बैलेंस ज्यादा होता है, व्यक्ति को अंदर से राहत रहती है कि मेरे पास इतना जमा है, और उसके कारण वो निश्चिंत भी रहता है कि कोई भी बात आएगी तो मैं मुसीबत में नहीं आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतना जमा है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसका अपना बैंक बैलेंस ना हो। आप में से कोई है जिनका बैंक में खाता ना हो? हाँ, हरेक का थोड़ा बहुत बैलेंस जरूर होता है। बैंक में ना भी रखे, घर में जरूर रखते हैं। माताएं भी अपना बैलेंस रखती है। चाहे कोई व्यापारी हो या कोई भी हो, कोई ऐसा नहीं होगा जो हमेशा बैंक से निकालता ही रहे। जमा करने का भी लक्ष्य रखते हैं। तो तीन बातें हैं। एक तो बुद्धि में ये रहता है कि मेरे पास ये खजाने हैं, इतना सोना है, इतना चांदी है, इतने पैसे हैं, इतनी जमीन है। ये खजाने हैं। एक तो ये नॉलेज बुद्धि में रखते हैं। दूसरा, ये अटेंशन रखते हैं कि केवल उन खजानों से खर्च नहीं करें, उसमें जमा भी करते जाएं, डिपॉजिट भी करें, केवल विड्रॉवल ना हो। और तीसरी बात कि वो जमा का खाता बढ़ता जाए, कम तो ना ही हो, जितना है उतना रहे वो भी नहीं, लेकिन जमा होता जाए, बढ़ता जाए। ये तीन बातों का ख्याल लौकिक जीवन में भी रहता है। और व्यक्ति इसलिए जमा करता है ताकि समय पर काम में आए, आई वेल के समय काम में ला सके। कोई भी मुसीबत का सामना कर सके और अपना सुख से जीवन जी सके, तो अपने भविष्य को निश्चिंत बनाने के लिए, सुखमय जीवन जीने के लिए और समय पर असहाय न हो जाए इसके लिए व्यक्ति जमा करने का लक्ष्य रखता है। कोई भी व्यापारी खोट के लिए धंधा नहीं करता है, फायदे के लिए ही बिजनेस करते हैं। आज भी बाबा ने हम बच्चों को मुरली में कहा है कि तुम सच्ची सच्ची कमाई कर रहे, वो झूठी कमाई भी चलती रहे। दोनों बात बाबा ने आज कही है। झूठी कमाई माना क्या अर्थ समझा? हाँ, झूठी कमाई माना बाबा ने ये नहीं कहा गलत तरीके से कमाओ, पर विनाशी कमाई, क्योंकि बाबा तो जो अविनाशी किस जन्मों की ऊंची प्राप्ति है उसकी तुलना में इसको झूठी कह रहे हैं। बाकी झूठी कमाई का अर्थ बाबा ने ये नहीं किया कि झूठ मूठ गलत तरीके से कमाए, विनाशी कमाई। तो विनाशी कमाई भी चलती रहे, क्योंकि शारीरिक जीवन के लिए तो वो धन साधन भी तो चाहिए ना। लेकिन जन्म जन्मांतर हमारा अच्छा हो जाए उसके लिए अविनाशी कमाई चाहिए, जिसको बाबा ने सच्ची कमाई कहा। और तीसरी बात भी बाबा ने आज की मुरली में कहा कि कोई पाप नहीं करना। ये तीनों महावाक्य साथ साथ थे। तो बैलेंस भी रहे, ऐसा भी नहीं कि सच्ची कमाई करने में लगे तो वो विनाशी कमाई के प्रति ध्यान न रहे और प्रैक्टिकल में फिर जब आवश्यकता हो तब हमें तकलीफ महसूस हो और फिर हम बाबा पर दोष देने लगे या सेंटर से कोई आशा रखने लगे, वो भी ना हो। तो दोनों बैलेंस की विनाशी कमाई भी बरोबर करनी है, क्योंकि लौकिक जीवन चलाना है। और अब तो और एक जवाबदारी बाबा ने हमें दे दी है कि इस अलौकिक सेवा को भी चलाना है। तो यज्ञ में भी मदद के लिए धन चाहिए, साधन चाहिए, इसलिए विनाशी कमाई भी बरोबर चलती रहे। और दूसरी बात की अविनाशी कमाई, सच्ची कमाई, और ये दोनों चलाने में पाप का सहारा नहीं लेना है, श्रीमत पर करना है। तो ये तीनों बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट बाबा ने कही और इस टॉपिक से रिलेटेड कही। तो अलौकिक जीवन के अंदर, इस संगम युग के अंदर बाबा ने हमें बहुत खजाने दिए हैं। एक तो हर आत्मा को जो नेचुरल खजाने मिले हैं वो है एक तो संकल्पों का खजाना, है ना। हर चैतन्य शक्ति आत्मा को ये खजाना प्राप्त है, संकल्पों का खजाना। जो विचारों का खजाना, जो विचार संपत्ति और कोई प्राणी के पास नहीं, एक इंसान ही है जो सोचने की शक्ति अपने आप में रखता है, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, विचार शक्ति उसको प्राप्त है। इसलिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बुद्धिशाली प्राणी कहा जाता है, क्योंकि विचार शक्ति उससे प्राप्त है। और ये हम सभी जानते हैं कि दुनिया में जितने भी संशोधन होते हैं उसका जन्म कहाँ होता है? व्यक्ति के मन के अंदर। कोई कितना भी बड़ा कार्य करना हो, सबसे पहले क्या आवश्यक है? मान लो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको करना है, लेकिन सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? सुंदर विचार, योजना। अगर विचार ही आपके पास अच्छे नहीं है, तो भले आपके पास धन है, जमीन है, साधन है, लेकिन मन में सुंदर क्रिएटिव प्लान नहीं है तो कोई अर्थ नहीं है। इसलिए वर्तमान समय दुनिया में क्रिएटिविटी को सबसे बड़ा खजाना माना जाता है। कहते हैं ना, एक समय था जो लैंड वॉज पावर, जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन होती थी वो सबसे बड़ा शक्तिशाली माना जाता है। राजाएं, जमींदार, पहले के जमाने में आप देखिए, जो जितने अधिक गांवों का राजा उतना बड़ा ठाकुर राजा माना जाता था। तो उस जमाने में लैंड वॉज पावर, लेकिन औद्योगिक विकास के बाद मनी वॉज पावर, पैसा वो शक्ति थी कि जो जितना धनवान उतना वो शक्तिशाली। लेकिन अब के समय में ऐसा है कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान, और उसमें भी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी जिसके अंदर है, आज मार्केट में या कोई भी जगत के अंदर वही व्यक्ति आगे निकल जाता है जिसके पास क्रिएटिव थॉट्स है। तो वो खजाना, वो संकल्पों का खजाना जो नेचुरली हर इंसान को प्राप्त है। दूसरा है वाणी का खजाना, शब्द संपत्ति जिसको कहते। वाणी, शब्द, वाचा, वो भी इंसान को ही प्राप्त है। भले और जानवर के अंदर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, लेकिन वो अपने अंदर की बातें कह नहीं सकते हैं, क्योंकि स्पीच की शक्ति, वाणी की शक्ति, शब्द रूपी संपत्ति, वो भी इंसान को प्राप्त है। और तीसरा है कर्म शक्ति। कर्म एक खजाना है। बाबा कहते ना, कर्म रूपी कलम से भाग्य की रेखाओं को लंबा कर सकते। इसलिए कर्म वो ठोस शक्ति है, एक बहुत बड़ा खजाना है। तो विचार, शब्द, कर्म, और चौथा है समय रूपी खजाना। टाइम इज मनी कहते हैं, बल्कि मोर देन मनी, है ना। पैसा अगर गंवाते हैं तो फिर व्यक्ति कमा सकता है, लेकिन जिसने समय गंवा दिया वो समय वापस नहीं आता है ना। इसलिए समय का एक चित्र बनाने के लिए एक व्यक्ति को कहा, तो उसने ऐसा चित्र बनाया कि समय रूपी बच्चा, एक व्यक्ति बनाया जिसके आगे बाल है लेकिन पीछे वो गंजा है, माने समय, अवसर, अपॉर्चुनिटी आते ही जो ले लेता है, पकड़ लेता है, वो प्राप्ति कर लेता है। एक बार हाथ से जो अपॉर्चुनिटी निकल गई, फिर पीछे से उसको पकड़ने का कुछ भी नहीं। इसलिए समय को भी बाबा कहते हैं बड़ा खजाना है, लेकिन समय रूपी खजाना यूज होता है मन वचन कर्म में। मान लो 24 घंटे का प्रतिदिन जो खजाना हमें मिला है, वो समय हम किस में यूज करते हैं? या तो सोचने में, या बोलने में, या कर्म करने में। तो समय रूपी खजाने का उपयोग विचार शब्द और कर्म के साथ है। इसलिए समय रूपी खजाने को अगर सफल करना है तो हमें क्या करना होगा? क्या करना हो? कहते ना भाई, समय को सफल करो, वेस्ट नहीं करो। तो समय रूपी खजाने को सफल करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने मन वचन कर्म को सफल करना होगा, क्योंकि समय यूज होता है मन वचन कर्म में। तो लोगों को हम यही सिखाते हैं ना, आजकल एक टॉपिक लोग बहुत मांगते हैं, टाइम मैनेजमेंट। तो हम उनको यही सिखाते हैं कि टाइम को मैनेज करने के लिए और कुछ नहीं करना है, सेल्फ को मैनेज करना है। आप अपने मन वचन कर्म को ठीक कर लो तो समय अपने आप प्रोडक्टिव हो जाएगा, सफल हो जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। क्योंकि समय वेस्ट तब जाता है जब या तो आप व्यर्थ सोचते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, या व्यर्थ कर्मों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो समय वेस्ट जाता है ना। इसलिए समय को सफल करने का कोई अलग से पुरुषार्थ नहीं है, उसका मूल पुरुषार्थ है मन वचन कर्म को ठीक करना। मैं कई बार सोचती थी, बाबा जो कहते हैं ना कि सतयुग में तुम माया जीत होते हो, प्रकृति जीत होते हो और काल जीत होते हो। तो मैं सोचती थी कि काल जीत बनने का क्या पुरुषार्थ, वो कैसे हम बने। लेकिन फिर वो स्पष्ट हुआ कि उसका कोई अलग से पुरुषार्थ नहीं है। काल जीत बनने के लिए मुझे वही पुरुषार्थ करना है माया जीत बनने का, क्योंकि माया जीत बनने से जो स्वराज्य अधिकारी मैं बनूंगी तो नेचुरली मेरा समय अपने आप सफल हो जाएगा, है ना। तो ये चार खजाने सभी को बाबा ने दिए हुए, नेचुरली मिले हुए हैं। हर एक व्यक्ति सोचता है, बोलता है, कर्म करता है और समय उससे जुड़ा हुआ है। और संगम युग में अलौकिक जन्म लेने के बाद प्यारे बाबा से जो खजाने हमें मिले हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि बाबा स्वयं ही सबसे बड़ा खजाना है ना, क्योंकि बाबा से हमें और खजाने मिले हैं, लेकिन बाबा ही वो खजानों की खान है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा शब्द ही जादू का शब्द है, बाबा स्मृति ही वो सर्व खजानों को खोलने की चाबी है। तो बाबा मिला माना हमें सब कुछ मिला है, ये हम क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा से हमें ये तीन खजाने और मिलते हैं। एक है ज्ञान का खजाना, बाबा कहते हैं ना ज्ञान रत्नों का खजाना, क्योंकि सत्य ज्ञान, मूल ज्ञान, यथार्थ ज्ञान सिवाय बाबा के और कोई दे नहीं सकता। आज सारा संसार भटक रहा है, क्यों? सत्य ज्ञान न होने के कारण। आज हमारा जीवन ठिकाने पर लग गया है, क्यों? क्या दिया बाबा ने? सत्य ज्ञान का खजाना। जिस सत्य ज्ञान के खजाने से हमें सही विचार मिले, यथार्थ समझ मिली, हमें स्पष्टता हुई कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए ज्ञान का खजाना वो बाबा से सबसे पहला खजाना हमें प्राप्त होता है। क्योंकि ज्ञान मिला तो अलौकिक जन्म हुआ, तो हमारा जीवन परिवर्तन हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं रियल नॉलेज इज लाइट, माइट एंड सोर्स ऑफ इनकम। बाबा का आना और आकर हमें सही ज्ञान देना, हमें पढ़ाना, यही बाबा की सबसे बड़ी कृपा है, आशीर्वाद है। इसलिए नित्य इतने प्यार से सत्य ज्ञान हमें समझाते रहना, यही बाबा की सबसे बड़ी हमारे पर कृपा है। हम स्वयं भी आपस में एक दो को समझाते हैं, लेकिन हम कितना जल्दी थक जाते हैं। आप कोई व्यक्ति को एक बार, दो बार, दस बार कोई बात समझाओ और फिर भी वो गलती करता रहे तो हम चिढ़ जाते हैं, छोड़ देते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं, ये समझेगा ही नहीं। और बाबा का धैर्य, कल्याण की भावना और प्यार देखो कितना है। क्या 66 वर्षों से लगातार प्रतिदिन बाबा हमें समझाते ही रहते। क्यों बाबा कहते हैं कि शिव जयंती ही गीता जयंती है? क्योंकि बाबा आए और आते ही ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो रोज रोज इतने प्यार से, कल्याण की भावना से और ऊंची उम्मीदों के साथ वही वही मूल बातें बाबा हमें समझाते हैं, ये सामान्य बात नहीं। इसलिए रोज जो हम मुरली सुनते हैं, वो मुरली ही खजाना है, क्योंकि बाबा भगवान क्या कहते हैं, वो ज्ञान रत्नों को प्राप्त करने का सोर्स जो है वो तो मुरली ही है ना। और दूसरा है गुणों का खजाना। बाबा केवल ज्ञान नहीं देते, लेकिन बाबा हमें गुणों का खजाना भी देते। आज दुनिया में बहुत विद्वान पंडित आचार्य है जो शास्त्रों के ज्ञान की बहुत बातें करते हैं, लेकिन ज्ञान के अनुरूप आचरण नहीं मिलता है, चरित्र नहीं मिलता है। बाबा ने हमारे सामने वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिए। शिव बाबा स्वयं गुणों का सागर तो हैं, लेकिन उसने जिस माध्यम द्वारा ज्ञान दिया या ओवरऑल यज्ञ के लिए जिन दादियों को निमित्त बनाया, वो ऐसे चरित्रवान गुणवान हमारे सामने पेश किए जो हमें उनसे गुणों की धारणा होती है। तो केवल ज्ञान नहीं दिया, लेकिन गुणों का खजाना भी बाबा ने दिया। क्योंकि जैसे ही हम बाबा को याद करते हैं, हमारे अपने असली गुण जागृत होने लगते हैं। बाबा की याद से हमारा अपना गुण स्वरूप इमर्ज होने लगता है। मीन्स बाबा ने हमारे अंदर गुणों का खजाना भी भरा है। और तीसरा जो बाबा कहते हैं कि शक्तियों का खजाना। बाबा ने केवल ज्ञान नहीं दिया, केवल गुणों का स्वरूप नहीं दिखाया, लेकिन हम कमजोर आत्माओं में शक्ति भी भरी है। हम वही आत्माएं हैं बाबा के बनने से पहले कैसी थी और आज कैसी है। आत्मा में ये शक्ति हिम्मत कहां से आई? तो बाबा कहते हैं जैसे ही हम उनसे योगयुक्त होते हैं, मन का कनेक्शन बाबा से होता है, आत्मा शक्तिशाली बनने लगती है। क्योंकि जब तक आत्मा शक्तिशाली नहीं बनती है, धारणा भी नहीं हो सकती। तो आज हम केवल ज्ञान सुनते नहीं हैं, लेकिन हम ज्ञान में चलते हैं, मीन्स आचरण में लाते हैं। वो धारण करने की शक्ति आत्मा में बाबा के साथ जुड़ने से आती है। व्यक्तिगत आप सबका अनुभव होगा कि बाबा के बनने के बाद हरेक में कौन कौन सी शक्ति आई। तो ये सारे खजाने बाबा ने हमें इस अलौकिक जीवन के अंदर दिए हैं। तो ड्रामा अनुसार हर चैतन्य आत्मा को विचार शब्द कर्म संपत्ति का खजाना मिला हुआ है। बाबा से ज्ञान गुण और शक्ति का खजाना मिलता है। और समय से हम सभी जुड़े हुए हैं, तो ये सात खजाने हम सभी के पास है। अब है कि हम इन खजानों को जमा कैसे करें। तो अलौकिक खजाने और नेचुरल जो मिले हुए खजाने हैं उसमें भी बाबा ने हमें संयोजन बताया है कि मनसा शक्ति का खजाना धारण कर। जैसे हम कहते हैं ना, मनसा से शक्ति का दान, क्योंकि आत्मा में जो पावर है वो हम विल से दूसरे को दे सकते हैं, वाचा से ज्ञान रत्नों का दान और कर्म द्वारा अपने आचरण और व्यवहार द्वारा गुणों का खजाना हमें प्रत्यक्ष करना है। तो लौकिक और अलौकिक दोनों का हमें कैसे संयोजन करना है? मनसा शक्ति कोई भी शक्ति का उपयोग हमें कहां कैसे करना है वो मनसा से ही हम सोचते हैं और निर्णय करते हैं। और आत्मा शक्तिशाली है, इसकी प्रतीति तब होती है जब कोई भी बात परिस्थिति में मन चलित ना हो, तब कहते हैं कि ये बड़ी शक्तिशाली अचल अडोल आत्मा है। चलो भाई, कर्म से चलित ना हुए, जैसे हम लक्ष्य रखते हैं ना कि अब हम बाबा के बने हैं, हम अपने नियम संयम और मर्यादाओं में इतने चले, कितना भी तूफान आए लेकिन कर्म से भूल ना हो, कर्मेंद्रियों से पाप कर्म ना हो, ये अटेंशन रखते हैं ना। लेकिन ये प्राइमरी स्थिति है, विकर्म में व्यक्ति चलित ना हो, अपने नियम और संयम में मजबूत बना रहे, वो तो हमारे धारणा की पहली स्टेज है। उससे और शक्तिशाली आत्मा है वो कर्म में तो चलित नहीं होती है लेकिन वाणी पर भी संयम रखती। भाई, मैंने गुस्से में आकर हाथ नहीं उठाया लेकिन मुख से पत्थर भी नहीं निकले, मेरा वाणी पर संयम रहा, तो हम कहेंगे कि ये और शक्तिशाली आत्मा है। वाणी से निकल जाता है तो भी हमें अपने आप को भी ग्लानी होती है और हमें सॉरी भी करना पड़ता है कि भाई मैंने ऐसे ही गुस्से में बोल दिया। हाँ, लेकिन उससे भी शक्तिशाली आत्मा हम किसको कहते हैं कि जो मनसा से भी चलित नहीं होते, मनसा से भी आकर्षित नहीं होते हैं, तब हम कहते हैं कि ये अंगद मिसल अचल अडोल आत्मा है। भी मनसा से भी ये आकर्षित नहीं होता है, इसलिए मनसा के साथ शक्तियों का खजाना और वाणी, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा की प्रतीति उनकी वाणी से होती। जैसे हम कहते हैं ना, अभी भगवान की प्रतीति भगवान की वाणी से होती। जो महावाक्य बाबा उच्चारण करते हैं वो महावाक्य ही सिद्ध करते हैं कि ये कोई इंसान नहीं बोल सकता है। ऐसे महावाक्य भगवान ही कह सकते हैं। तो भगवान की प्रतीति भगवान के ज्ञान से, भगवान की वाणी से होती है। और वैसे भी कहा जाता है, कौन आत्मा कितनी रॉयल खानदान है वो उनकी वाणी से पता चलता है। तब कहते हैं वाणी से प्राणी परखा जाता है। केवल बाहर से अप टू डेट बन गए इससे व्यक्ति रॉयल नहीं लगती है, लेकिन उनका वाणी व्यवहार कैसा है। तो जितना ज्ञान की गहराई हम प्राप्त करते हैं और ज्ञान को आचरण में लाते हैं, तो हमें क्या सिद्धि मिलती है, प्राप्ति होती है, वाणी पर संयम प्राप्त होता है। इसलिए वाचा और ज्ञान का खजाना और कर्म और गुण का खजाना, आत्मा कितनी गुणवान है वो उनके व्यवहार से पता चले। कर्म हमारे गुणों को प्रत्यक्ष करते हैं। इसलिए अगर हमें अपने संकल्पों के खजाने को सफल करना है, तो बाबा ने हमें मनसा के लिए दो कार्य दिए हैं कि या तो आप मन मना भव की स्थिति में रहें या स्वदर्शन चक्र चलाएं। कल की मुरली में आपने अटेंशन दिया हो, बाबा ने दोनों बात एक साथ कही। स्वदर्शन चक्र फिराते हुए एक बाप से बुद्धि योग रखो। आपने इस पर चिंतन किया होगा कि कई बार हम सुनते थे लेकिन बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र चलाओ, लेकिन कितनी अच्छी कल बात बाबा ने कही कि स्वदर्शन चक्र चलाते हुए भी बुद्धि योग एक बाबा से, माना स्वचिंतन भी करो, स्वनिरीक्षण भी करो, बुद्धि में ज्ञान का चक्र भी चले, लेकिन ये करते हुए ज्ञान के बीज बाबा से हम कनेक्टेड रहे, तो वो स्वदर्शन मनमत का नहीं होगा, यथार्थ श्रीमत का स्वदर्शन हो। कई बार हम स्वदर्शन करते हैं लेकिन क्यों हमें अपनी कमियां रियलाइज नहीं होती है, क्योंकि हम सूक्ष्म में बाबा से कनेक्टेड नहीं होते। तो मनसा हमारी या तो बाबा की याद में, ज्ञान के चिंतन में, और ज्ञान के चिंतन में स्वचिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, शुभ चिंतन, परमात्मा चिंतन, ये सब समाया हुआ है। इसलिए खजानों को जमा करने की विधि में बाबा ने हमें तीन बातें सिखाई है। एक या दो साल पहले की जो बाबा की सीजन चली है पिछले साल और उससे पहले, उसमें बाबा ने स्पष्ट बताया है कि खजानों को जमा करने की विधि में तीन बातें हैं। एक है स्वमान। जो आत्मा स्वमान में स्थित होंगी उसको हल्के साधारण विचार कभी नहीं आएंगे। जब हम अपने स्वमान से नीचे उतर आते हैं ना, तब हमें साधारण संकल्प चलते। इसलिए हम जहां भी जाएं, जो कुछ भी करें, खाएं, पिएं, उठे, बैठे, बोले, देखे, चले, सोए, हमें अंदर से ये अवेयरनेस हो कि सचमुच मैं कौन हूं, किसकी संतान हूं और अब मैं किस कार्य के लिए निमित्त, अब मैं सामान्य नहीं हूं, केवल एक इंसान व्यक्ति नहीं हूं, मैं विशेष आत्मा, डायरेक्ट परमात्मा की संतान और विश्व कल्याण के लिए निमित्त हूं। जब ये स्वमान हर क्षण हमारा जागृत होता है तो हमें हमारी मनसा साधारण होगी ही नहीं, और जब मनसा हमारी श्रेष्ठ रहेगी तो ऑटोमेटिक हमारे वाणी और कर्म ठीक चले। दूसरी बात बाबा ने बताई थी, एक स्वमान, दूसरा बाबा की याद। ये एक समझने की बात है, केवल स्वमान स्थाई नहीं हो सकता है, केवल स्वमान आत्मा की शक्ति पर स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आत्मा अभी पूर्ण शक्तिशाली तो नहीं बनी हूं ना, इसलिए केवल मैं अपने लिए स्वमान लेती हूं तो वो स्थाई नहीं हो सकेगा। जब तक कि मैं बाबा से अपने आप को हर घड़ी लिंक ना करूं, जोड़ू नहीं, क्योंकि मुझे कांस्टेंट बाबा से शक्ति लेते रहना है, तब मेरा स्वमान बना रहेगा। इसलिए बाबा की याद, किसने मुझे इतना ऊंचा बनाया है, किसके बल पर मैं आज महान बनी हुई हूं, तो वो जो मेरा बैकबोन है, मेरा इंटरनल जो एनर्जी का सोर्स है, वो बाबा से मेरा योग जरूर रहे। मान लो मैं केवल ये सोचती हूं कि मैं पवित्र स्वरूप फरिश्ता हूं, तो केवल इतनी स्मृति से वो स्थिति मेरी नहीं बन सकती। बेशक वो ऊंचा विचार है, लेकिन वो ऊंचा विचार टिकेगा तब जब मैं बाबा से योगी युक्त हूं, क्योंकि तभी मुझे आत्मा में कांस्टेंट शक्ति आई। और तीसरी बात बाबा ने जमा की विधि में बताई है कि जो कुछ फालतू है, व्यर्थ है, उसको फुल स्टॉप लगा। जो व्यर्थ है, इस ज्ञान के अनुरूप नहीं है, इस ब्राह्मण जीवन को शोभा देने वाला नहीं है, वो मुझे न सोचना है, न बोलना है, न करना है। क्योंकि अक्सर व्यर्थ तभी चलता है जब ज्ञान की गहराई नहीं होती है। या तो हम व्यक्ति को नहीं समझ सकते हैं, या परिस्थिति को नहीं समझ सकते हैं, या हम अपने आप को करेक्ट अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तभी व्यर्थ चलता है। मान लो एक व्यक्ति को अच्छा सेवा का मौका मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, तो वहां मेरे अंदर समझ की कमी होती है, जिसके कारण मुझे व्यर्थ विचार चलते हैं। या तो मैं उनकी कैपेसिटी को नहीं समझ रही हूं, या तो मैं अपनी लिमिटेशन कमजोरी को महसूस नहीं कर रही हूं, और या मेरे अंदर ये समझ की कमी है कि व्यक्ति का विकास व्यक्ति की अपनी क्षमता पर होता है, किसी के करने से नहीं होता है। तो ज्ञान के जो भी राज बाबा ने बताए हैं, उन राजों की गहरी समझ ना होने के कारण हमें व्यक्ति के लिए, घटना के लिए, कारोबार के लिए, परिस्थिति के लिए व्यर्थ विचार चलते हैं। तो जितना आप ज्ञान की गहराई में जाएंगे, उतना ये व्यर्थ को फुल स्टॉप लगता जाएगा। और प्रैक्टिकली भी हमारा एम रहे कि जब मेरा लक्ष्य है अपने आप को शक्तिशाली बनाने का, अपने आप को भरने का, क्योंकि बाबा ने कहा है जितना जमा का खाता होगा अनुभूति का आधार यही जमा का खाता हो, चाहे मुझे अच्छे दिव्य अनुभव हो, चाहे मेरी स्थिति से दूसरों को दिव्य अनुभव हो, उसका आधार इंटरनल जमा का खाता है। इसलिए जो कुछ व्यर्थ है, चाहे मेरे आहार में, विहार में, संग में, पहरवाइश में, पढ़ने में, देखने में, जहां भी व्यर्थ है, मुझे उन बातों को चेंज करना चाहिए। हम क्या समझते हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते हैं और योग से अपने को पावरफुल बनाना चाहते हैं, वो नहीं हो सकता। तो ये हम ब्राह्मण बच्चों को स्पष्टता रहे कि योग केवल अभ्यास नहीं है, घंटा दो घंटा योग करो और इससे सब कुछ ठीक हो जाए, योग केवल अभ्यास नहीं है, टोटल योगी जीवन पद्धति अपनाना होगा, तब आत्मा शक्तिशाली बनेगी, जमा का बैलेंस बढ़ेगा और हम अपने आप आंतरिक जमा के बल से हर बात को सहज पार करते जाएंगे। तो हमें अपनी दिनचर्या को ठीक करना होगा, अपने आहार विहार को ठीक करना होगा, अपने संग को ठीक करना होगा, अपना पहनना, पढ़ना, देखना, ये सारी क्रियाओं को हमें परिवर्तन करना होगा। जो जो लीकेज है, जहां से हमारी शक्ति बह जाती है, और मैं समझती हूं कि जो बाबा के रोज पढ़ाई करने वाले ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं, उन हरेक को ये जरूर अपने आप के लिए तो स्पष्टता होगी ही कि मेरी अपनी लीकेज कौन सी है, जहां से मेरी शक्ति बह जाती है और अवस्था मेरी डाउन हो जाती है, कहां मैं कमजोर हो जाती हूं और वहां से ही मुझे पेपर आते हैं, वो अपनी लीकेज, वो अपनी कमजोरी का दरवाजा। मैं समझती हूं कि हरेक जानते होंगे, और फिर भी आप सब मधुबन में आए हैं। मधुबन का वातावरण ऐसा है, और जब हम इन बड़ों के पास, दादियों के पास, बाबा की इस भूमि पर आते हैं, तो हमें शांति से एकांत में कुछ क्षण बैठकर अपना स्वदर्शन करना चाहिए, अपना निरीक्षण कर लेना चाहिए। तो हमें अपना चित्र स्पष्ट दिखाई देगा, तो हम इन लीकेजेस को बंद करने का पुरुषार्थ करें और बाबा से लेने का पुरुषार्थ, ये दोनों पुरुषार्थ साथ साथ हम करेंगे, तब हम इन खजानों को जमा कर सकते हैं। इसलिए मन वचन कर्म को पॉजिटिव बनाते हैं तो जमा होता है, नेगेटिव करते हैं तो माइनस होता है। और मन वचन कर्म को पॉजिटिव बनाने का आधार है ज्ञान गुण और शक्ति को अभ्यास में लाना। ये है सार। ओम शांति।